आप हैं SBS हिंदी के साथ।
पेश है आज के मुख्य समाचार वैशाली जैन के साथ। पूर्वी तट पर आई बाढ़ से कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति में देरी। भारत में कोरोना वायरस फिर तेजी पर, एक दिन में हुई 212 मृत्यु दर्ज। और फुटबॉल में लेस्टर सिटी 4 दशक बाद पहुंचा फुटबॉल एसोसिएशन कप के फाइनल में। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर मध्य न्यू साउथ वेल्स और पश्चिमी सिडनी में हजारों लोगों को बाढ़ के चलते अपना घर खाली करना पड़ा है। राज्य आपातकालीन सेवा SES ने चेतावनी जारी की है कि मौसम सुधरने में के अभी कोई आसार नहीं है और वे इलाके जहां जल भराव अपने चरम पर पहुंच गया है बाढ़ की मार झेल सकते हैं। पोर्ट मैक्वारी में अब तक 80 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि न्यू साउथ वेल्स के कुछ कस्बों का बिजली और पानी बंद हो गया है। फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट मंत्री डेविड लिटिल प्राउड का कहना है कि आपातकालीन सेवा दलों के बचाव कार्यों का ही नतीजा है कि अब तक किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है।
This is a very dangerous situation and it shouldn't be a she'll be right sort of attitude to this. We've all got a responsibility to play in this, not just emergency service personnel, but each and every one of us. You should have a plan.
न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर ग्लैडिस बर्जिक्लियन का कहना है कि राज्य में पिछले कुछ समय से अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है और अब फिर एक बार सामने कठिन चुनौती आ खड़ी हुई है।
Some communities who were battered by the bushfires are now being battered by the floods and deep drought prior to that. And I don't know any time in our state's history when we've had these extreme weather conditions in such quick succession in the middle of a pandemic.
इसी बीच दक्षिण पूर्वी क्वींसलैंड में पिछले 24 घंटों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। ब्रिस्बेन, लोगन और गोल्ड कोस्ट के आसपास के इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है और सड़क मार्ग बाधित हो गए हैं। बीते दिन राज्य आपातकालीन सेवा को कुल 320 इमरजेंसी कॉलिंग आईं और 6 लोगों को बचाया गया। क्वींसलैंड में बुधवार तक भारी वर्षा का अनुमान है। ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि टीकाकरण के दूसरे चरण में लगभग 60 लाख लोगों को टीका लगवाने की योग्यता प्राप्त है, लेकिन तेज बारिशों और बाढ़ के चलते कई क्लिनिक खुराक बांटने के लिए खुले नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया के टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण आज यानी 22 मार्च से शुरू होगा, लेकिन बिगड़े मौसम ने अभियान की गति धीमी कर दी है। उप मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी माइकल किड का कहना है कि वे ये जानने की प्रतीक्षा में हैं कि इस हफ्ते मौसम की वजह से कितने क्लिनिकों पर असर पड़ा है।
The most important thing, of course, is safety. People should make sure that they're not putting themselves at risk by being on the roads, should be following, of course, all the instructions that are in place.
न्यू साउथ वेल्स सरकार का कहना है कि सिडनी के क्लिनिक अब भी वैक्सीन के अपॉइंटमेंट के लिए खुले हैं। फेडरल पुलिस कमिश्नर रीस कर्शॉ ने देश के सबसे बड़े अधिकारी से लिबरल स्टाफर ब्रिटनी हिगिन्स के बलात्कार के मामले में एक साथ कई जांचें बिठाने पर चिंता जताई है। श्री कर्शॉ ने प्रधानमंत्री विभाग एवं कैबिनेट सचिव फिल गेजन्स से बातचीत की और यह भी कहा कि वे मामले से जुड़े हर व्यक्ति से पूछताछ कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मॉरिसन ने श्री गेजन्स को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि वे पता लगाएं कि उनके विभाग में किस किस को सुश्री हिगिन्स द्वारा लगाए गए आरोपों की खबर थी। फेडरल कोषाध्यक्ष जॉश फ्राइडनबर्ग का कहना है कि जॉब मेकर हायरिंग स्कीम की योग्यता में आगामी बजट में बदलाव किए जाएंगे। श्री फ्राइडनबर्ग का कहना है कि शुरुआती 6 हफ्तों में ही इस योजना के तहत 521 नौकरियां लगने के बाद इस स्कीम की पात्रता पर पुनर्विचार जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि युवाओं के पास रोजगार हो। इस स्कीम के तहत उन नियोक्ताओं को जो 29 साल से कम के लोगों को नौकरी पर रखते हैं $200 प्रति हफ्ते के दर से भत्ता दिया जाएगा। फेडरल संसद के निचले सदन में इस सप्ताह इस बात पर चर्चा होगी कि रक्षा कर्मियों और बुजुर्गों में आत्महत्या पर जांच के लिए रॉयल कमीशन का गठन किया जाए या नहीं। पिछले सप्ताह कोएलिशन सांसदों ने ग्रीन्स, निर्दलीय और लेबर के साथ रॉयल कमीशन के गठन के समर्थन में वोट किया था। फेडरल सरकार को उम्मीद है कि निचले सदन में यह प्रस्ताव खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार एक नेशनल वेटरन सुसाइड प्रिवेंशन कमीशन स्थापित करना चाहती है। नेशनल सांसद बरानबी जॉयस का कहना है कि सरकार को पीड़ित परिवारों की आवाज सुनने की जरूरत है।
It's only the executive that can actually call a royal commission. You can have all the motions in the world. It's the executive that will call a royal commission or otherwise. And I don't want to provoke the executive and make it a sort of a challenge that they believe that they're not running the show. I know how politics works.
उधर प्रधानमंत्री मॉरिसन ने कहा है कि वे समस्या का एक पक्का निदान चाहते हैं और इसीलिए एक दीर्घावधि कमीशन की स्थापना पर जोर दे रहे हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। यूनाइटेड किंगडम की आधी से ज्यादा वयस्क जनसंख्या को कोरोना वायरस के टीके की कम से कम एक खुराक लग चुकी है। 8,44,000 टीकों के वितरण के बाद यूके में प्रतिदिन टीकाकरण का नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। ब्रितानी स्वास्थ्य सचिव मैट हैनकॉक ने कहा है कि ये किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे तेज टीकाकरण अभियान रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर से सामुदायिक स्वास्थ्य में विविधता के प्रोफेसर गुर्च रंधावा सिखों के लिए खुले एक नए वैक्सीनेशन क्लिनिक से, जहां टीकों के साथ साथ अरदास भी की जाती है, बात करते हुए बोले कि
And what better selfless service than opening up a pop-up clinic that reaches out to anybody of any religion. So today we've got people from the Muslim faith, the Christian faith, Sikhs, all coming in to be vaccinated.
और अब खबरें भारत से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजनीतिक हिंसा से पीड़ित हर परिवार को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने साथ यह भी कहा कि बीजेपी अगर बंगाल में सरकार बनाती है तो बंगाली भाषा को यूएन में आधिकारिक भाषा बनाने का पूरा प्रयास करेगी।
जितनी भी राजनीतिक हिंसा चाहे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता की हुई हो, वो सभी की जांच के लिए एसआईटी का गठन करेंगे और सभी राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों की सहायता के लिए हम 25 लाख रुपया हर परिवार को देने का काम करेंगे। हम अर्धसैनिक बलों में नारायणी सेना बटालियन की स्थापना करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में बंगाली भाषा को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए बंगाल सरकार पूरा प्रयास करेगी।
उधर तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगाता राय ने कहा है कि बीजेपी की इन घोषणाओं के कोई मायने नहीं हैं। श्री रॉय ने कहा कि बीजेपी ने 2 करोड़ नौकरियों और 15 लाख रुपयों का भी वादा किया था, लेकिन पूरा कुछ भी नहीं किया।
बीजेपी का घोषणा का क्या महत्व है? वो लोग तो घोषणा किए थे कि 15 लाख रुपया हर आदमी को दिया जाएगा, 2 करोड़ नौकरी हर साल दिया जाएगा, कुछ ही तो पूरा नहीं हुआ। मैं पूछने चाहता हूँ कि जहाँ बीजेपी का सरकार है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, कर्नाटक, इस जगह में क्या महिला को पढ़ाई निःशुल्क कर दिया गया है? ये सब फिजूल बातें हैं, ये जुमला है।
भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या अब 1,16,46,081 हो गई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो भारत में 46,951 मामले सामने आए हैं। देश में अब कुल सक्रिय मामलों की संख्या 3,34,646 है। भारत में पिछले 24 घंटों में 212 लोगों ने इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवाई है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी सोमवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 56 रुपये और अमरीकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 77 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। फुटबॉल में फेडरेशन एसोसिएशन कप में लेस्टर सिटी मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर 40 सालों में पहली बार फाइनल्स में प्रवेश कर गया है। यह करीब दो दशकों में लेस्टर सिटी की मैनचेस्टर यूनाइटेड पर पहली विजय थी। और अंत में एक नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। पर्थ में कल बादल खुलने के आसार हैं। यहाँ अधिकतम तापमान 26 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में कल धूप छांव का मौसम रहेगा। यहाँ अधिकतम तापमान 25 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में कल पानी बरसता रहेगा। यहाँ अधिकतम तापमान 21 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देश की राजधानी कैनबरा में भारी वर्षा का अनुमान है। यहाँ का अधिकतम तापमान 18 डिग्री जबकि न्यूनतम 12 डिग्री रह सकता है। सिडनी में भी कल भारी वर्षा का अनुमान है। यहाँ अधिकतम तापमान 22 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ब्रिस्बेन में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। यहाँ अधिकतम तापमान 24 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। डार्विन में कल आंधी के साथ बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री जबकि न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल गरज के साथ बारिश अनुभव की जाएगी। दिल्ली का अधिकतम तापमान 30 डिग्री जबकि न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।